छंद से भगवान चंदा प्रभु की स्तुति पूज्य माताजी ने प्रारंभ की, उसी को आगे लेके चलती हूँ। 11 अक्षरी अनेक छंद, 6 छंद 11 अक्षरी हमने आपको पढ़ा दिए। अब 7वें छंद में आती हूँ, इसका नाम है सुमुखी छंद। और ये जिस छंद के लक्षण को भगवान की स्तुति में निबद्ध कर देने से अपना मुख भी सुमुख बन जाता है, अपनी जिह्वा भी पवित्र हो जाती है और अपना कंठ भी अकुंठित हो जाता है। ऐसे 11 अक्षरी सुमुखी छंद में ले चलती हूँ आपको। सुरपतिया प्रणमंती सदा गणपतियो अनुसरंती मुदा, मुनिपतिया कवियंती गुणा मई विनती कुरु तम करुणा। यानी भगवान की पांचों कल्याण ऊपर के श्लोकों में बता चुकी। अब ज्ञानमती माता जी सुमुखी चंद के माध्यम से कहती हैं कि भगवान सुरपतिया सदा प्रणमंती, अर्थात हे चंदा प्रभु भगवान, आपके चरणों में हमेशा, सुरपति मतलब इंद्र, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र और सारे इंद्र जो हैं हमेशा आपको नमन करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। पढ़ते हैं आप, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। यानी जिनके भक्त अमर है, देवता है और झुक करके प्रणाम करते हैं चरणों में, तब उनके मुकुटों की मणि आपकी चरणों में जाती है और उनके अंदर बहुत अधिक चमक आ जाती है। तो ज्ञानमती माता क्या कहती हैं कि भगवान सुरपतिया सदा प्रणमंती, सुरपति इंद्रराज हमेशा आपको प्रणाम करते हैं, और मुनिपतिया गणपतियों अनुसरंति मुदा, और गणपति माने गणधर देव आदि भी हर्ष से मुदा हर्ष से आपका अनुसरण करते हैं। अनुसरण करना मतलब आप मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष मार्ग के सच्चे विधाता बन गए तो वे भी मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए भगवान के समोसरण में 12 सभाओं में सबसे पहली सभा में सबसे आगे गणधर भगवान का स्थान होता है, क्योंकि वे साक्षात भगवान की वाणी को अपने आचरण में लाते हैं। इसीलिए कहा कि ये देव, ये चंदा प्रभु भगवान गणधर देव हर्ष से आपका अनुसरण करते हैं। और फिर मुनि पतिया गुणान कवियंती, और जो मुनियों के पति, मुनियों के अधिपति आचार्य गण आदि हैं, वे सभी आपके गुणों का गान करते हैं, कोई स्तुति रचते हैं, कोई आपके चरणों में नमन करते रहते हैं, कोई हिंदी में कहते हैं, कोई संस्कृत में कहते हैं, कोई मागधी भाषा में कहते हैं, सब अपनी अपनी भाषा में आपका गुणानुवाद करते हैं। उसके बाद मई विनते त्वं करुणां करो, मई यानी मुझे, मुझे नमस्कार करते हुए भक्त पर आप करुणां करो, करुणा कीजिए, दया कीजिए। आप इन स्तुतियों के माध्यम से व्याकरण का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कौन सी विभक्ति है, कहाँ कौन सा अलंकार है, किस प्रकार से छंदों को निबद्ध किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल 11 अक्षर कहीं से भी ले आए, कुछ भी अक्षर रख दिए, अर्थ होना चाहिए उसके अंदर, गुण होना चाहिए उसके अंदर, शोभा होनी चाहिए उसके अंदर, प्रतिभा होनी चाहिए उसके अंदर। यही सब व्याकरण, छंद, अलंकार और कोश को पढ़ने वाले ही ऐसी विशेषताओं को समझ सकते हैं, तभी उनको श्लोक आदि, काव्य या टीका आदि करने का अधिकार होता है। तो महानुभाव, ऐसे आज एक श्लोक के द्वारा ही चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करके, और यही भावना भाना है कि भगवान मई विनते त्वं करुणां करो, मैं आपके जो विनय कर रहा हूँ, आपके चरणों में नत हो रहा हूँ, तो मुझ भक्त पर आप करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तो क्या हम कोई फटीचर हैं जो हमारे ऊपर दया कर देंगे? भगवान दया कैसे करेंगे हमारी आत्मा पर? हमने अपने आत्मा को जो कर्मों से निबद्ध कर रखा है, भगवान कैसे करुणा करेंगे कि वे हमें कर्म बंध से छुड़ाएंगे? यानी उनकी भक्ति से हमारे कर्मबंध शिथिल हो जाएंगे और हम भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। यही स्तुति का प्रकार है और यही भगवान की करुणा का प्रतीक माना जाता है। ये दोषास्पद नहीं होता, ये स्तुति का प्रकार है और इसे कहते हैं अनुभय वचन योग। सत्य नहीं है क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं, वितरागी हैं। असत्य नहीं है क्योंकि भगवान की भक्ति से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसी के लिए भाषा सच मोसा ऐसा कुंद कुंद देव ने अपने काव्यों में कहा है। तो ये असत्य मृषा नाम की भाषा का प्रयोग करते हुए पूज्य माता ने ऐसे छंद अलंकार में निबद्ध करके इस कल्याण कल्करी स्तोत्र की जो रचना की है, सभी लोग इसका पठन करके और छंदों का व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करें, यही सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।